कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी एक परसी सबको बांटो माता जी को यशोदानंदन ब्रज जन रंजन एक परसी सबको बांट दो एक परसी ज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 की जय गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय चैतन्य महाप्रभु की जय श्री गौर निताय की जय कृपया मेरे बात दोहराए। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीले तम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजो कनिकावदातो संकीर्तनै कपितरो कमलायताचो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे प्रियजन करो करुणावतारो। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस गौर पूर्णिमा फेस्टिवल उत्सव में। बहुत महत्वपूर्ण दिवस एक गौर पूर्णिमा उत्सव है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस इस पूर्णिमा के दिन पे हुआ था। और हम वैष्णवों के लिए विशेष करके गौड़ीय वैष्णवों के लिए जो उत्सव है ना बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। पूरे साल में जितने भी उत्सव आता है उन उत्सवों में सर्वश्रेष्ठ अगर उत्सव है हम भक्तों के लिए तो यह है गौर पूर्णिमा उत्सव। आप बोलेंगे प्रभु जी जन्माष्टमी तो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है फेस्टिवल, लेकिन उस फेस्टिवल में हम भक्तों को और लोगों को इनवाइट करके बहुत सारे सेवाएं करना रहता है, उनको लेके आना रहता है। लेकिन ये जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है हम गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, भक्तों का फेस्टिवल है। तो आइए हम चैतन्य महाप्रभु जिनका आविर्भाव दिवस पूर्णिमा के दिन पे हुआ उनके विषय में हम कुछ श्रवण करने का आज प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, एक कौन कौन व्यक्ति नहीं जानता है चैतन्य महाप्रभु के कौन है करके, नहीं जानने वाले कोई? अभी अभी जिनका हमने अभिषेक किया वो कौन है करके नहीं जानता कोई, ऐसा कोई है? सब लोग जानते हैं ना? कौन है चैतन्य महाप्रभु, कौन है बताइए? तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य है आज से 550 वर्ष पहले पूर्व नवदीप में मायापुर धाम में हुआ, जिनका कि आज हम लोगों ने बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया। खुले आसमान में तारों के बीच में कितना सुंदर वातावरण है, बहुत अच्छा वातावरण हुआ ना, सब लोगों ने सुंदर अभिषेक किया। तो चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण है, जो कि इस कलयुग में कलयुग के पतित से पतित जीवों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं हम कृष्ण और राधा और कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम इतना भजन साधन कर रहे हैं ना, तो उसी कृष्ण प्रेम को दिल देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं आए। तो देखिए, भगवान जब प्रकट होने वाले होते हैं या उनका अवतार होने वाला होता है तो उनका जो वर्णन है ना, हमारे वेद और शास्त्रों में पहले से हो चुका रहता है। ऐसा नहीं कि वो प्रकट हो गए ऐसा ही। वेद पुराण शास्त्रों जो कि लाखों लाखों वर्षों से चला आ रहा है, उसमें उनका वर्णन पहले से हो चुका है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि संसार में अधिकतर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन भगवान है तो पहली बात है कि उनका जो वर्णन है ना, वो वेद और शास्त्रों में पहले से होना चाहिए, है कि नहीं। और यही नहीं, उनके अति मानवीय कार्य भी होने चाहिए, है ना। जैसे कि भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो क्या किए, गोवर्धन को धारण किए। तो कोई अपने आप को भगवान जब बोलता है तो हम कह सकते हैं उसको कि कुछ गोवर्धन तुम भी उठा के दिखाओ, हम मानते हैं, है ना। भगवान राम ने एक समुद्र के ऊपर सेतु बांध दिया, ये कोई मानव कर नहीं सकता है। तो ऐसे अनेक लक्षण है, अनेक चीजें हैं जो कि शास्त्रों में वर्णन है कि ये लक्षण है अगर वो भगवान अपने आप को बोलता है। क्योंकि संसार में आज अपने आप को स्वामी और अपने आप को भगवान कहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है ना। तो उनको इन सारे लक्षणों से और विशेष करके भगवान के जो चरण में जो चिन्ह होते हैं, कई सारे चिन्हों का वर्णन हमारे वेद और शास्त्रों में पहले से हुआ है, तो हम देख सकते हैं उनकी इस प्रकार का है क्या उसके अंदर, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं और कोई नहीं, भगवान कृष्ण ही है जो कि इस कलयुग के पतित से पतित जीवों का उद्धार करने के लिए राधा और कृष्ण एक स्वरूप बनकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। एक दो दो आत्मा और एक शरीर, राधा और जिस प्रेम को प्राप्त हो एक शरीर में चैतन्य महाप्रभु का है। तभी आइए हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में, जहां पे वर्णन है कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। और चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के कुछ जो आप लोग के हाथ में जो श्लोक है जो दिया हूं मैंने, उसमें कुछ 10 नामों का वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रथम आदि लीला में इस श्लोक को रखते हैं। और ये जो श्लोक है महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत विष्णु सहस्त्र नाम का यह श्लोक है। तो विष्णु सहस्त्र नाम में क्या वर्णन है, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के सहस्त्र हजार नाम का वर्णन किया गया है। कृष्णदास कविदास गोस्वामी इस श्लोक को विष्णु सहस्त्र नाम में से इस श्लोक को निकालकर चैतन्य चरितामृत में रखते हैं। कहते हैं कि ये जो श्लोक है श्री चैतन्य महाप्रभु, इसमें जो नाम है 10 नाम है ये श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए है। तो इससे भी पता चल जाता हमको कि विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु कृष्ण के नाम है वहां पे, लेकिन वहां का जो श्लोक है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के लिए कोट करते हैं, जिसमें 10 नाम चैतन्य महाप्रभु के 10 नाम है, मतलब चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं कृष्ण ही है। तो आइए हम इस श्लोक का थोड़ा पाठ करते हैं और इसी श्लोक को थोड़ा से चर्चा करते हुए, और कुछ पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन 10 नाम है उसमें से 2-3 नामों का हम व्याख्यान करेंगे, और साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु के कुछ पास्ट टाइम को इस नामों का वर्णन करते करते कुछ उनकी लीलाओं को कथाओं को भी कहेंगे। तो आइए मेरे बाद उच्चारण करिए इस श्लोक को। सुवर्ण वर्ण हे मांगो, सुवर्ण वर्ण हे मांगो, वरांगश्चंदनांगदे संन्यास कृच्छमा शांतो निष्ठा शांति परायण, निष्ठा शांति परायण, सुवर्ण वर्ण हे मांगो, वरांगश्चंदनांगदे, सन्यास कृच्छमा शांतो निष्ठा शांति परायण। तो महाभारत के इस अनुशासन विष्णु सहस्त्र नाम में से श्लोक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु के 10 नामों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला नाम है सुवर्ण वर्ण, दूसरा है हे मांगो, तीसरा है वरांग, चौथा है चंदनांगदी और पांचवा है संन्यास कृच, उसके बाद शांतो निष्ठा शांति परायण है। ये 10 नाम कृष्णदास कविराज गोस्वामी गिनाते हैं जो कि विष्णु सहस्त्र नाम से लिया उन्होंने। तो देखिये चेतन महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए, प्रयाग में शिक्षा देते हुए रूप गोस्वामी को चेतन महाप्रभु कहते हैं कि एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्षत जीव करे भ्रमण। इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत कोटि जीवगण है, 84 लाख प्रकार की युनिया है जो कि इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। एते ब्रह्मांड भरे अनंत जीवगण जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतने जीव हैं जो कि 84 लक्षत जीव करे भ्रमण। 84 लाख प्रकार की योनिया है जिसमें ये जीव संसार के सारे जीव भ्रमण कर रहे हैं, है ना। और इन अनंत जीवों में से तार मध्य मनुष्य योनिस्व अल्प, इस 84 लाख योनियों में से मनुष्य की जो योनि है ना बहुत कम है, मतलब हम मनुष्यों की योनि बहुत कम है। 84 लाख योनियों में से 4 लाख प्रकार के ही केवल मनुष्य है। उन 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में से भी सभ्य मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। 84 लाख योनियों में से एक तो मनुष्यों की संख्या बहुत कम और उस मनुष्यों की संख्या में से भी सभ्य मनुष्यों की संख्या कम, अर्थात वेद और शास्त्र और ज्ञान को धारण करने वाले ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। तो एक तो मनुष्यों की संख्या कम और उसमें भी सभ्य मनुष्यों की संख्या कम, और उन सभ्य मनुष्यों में से भी भगवान कृष्ण की भक्ति करने वालों की संख्या बहुत कम। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् तत् सिद्धये, कि सहस्त्र सहस्त्र मनुष्यों में से कोई बिरला ही होगा जो मेरे कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर पाएगा। मतलब हम विचार करें कि यहाँ पे हम जितने लोग भी बैठे कितने महान है, क्योंकि भगवान स्वयं इस बात को बताते हैं कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, सहस्त्र सहस्त्र मनुष्य में से कोई बिरला ही होगा जो मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे सोचिए कि कितनी कृपा है वैष्णवों की, हमारे गुरुजनों की, श्री चैतन्य महाप्रभु की कितनी कृपा है कि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट है। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि एक तो मनुष्यों की संख्या कम, उसमें भी सभ्य मनुष्यों की संख्या कम, और सभ्य मनुष्यों में से भी भगवान कृष्ण की भक्ति करने वालों की संख्या बहुत कम है, और इस कृष्ण भक्त में से भी, कृष्ण की भक्ति करने वालों में से भी श्री चैतन्य महाप्रभु के जानने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि संसार में कृष्ण भक्त अनेकों हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जानने वालों की संख्या बहुत कम है। मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं कि इस कलयुग में अगर श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं जाने तो हमको राधा और कृष्ण का प्रेम कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तक सोचिए हम कितने भाग्यवान जीव है जिनको कि हमको चैतन्य महाप्रभु के विषय में जाने, हम चैतन्य महाप्रभु की शरणागति को प्राप्त किए हुए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। स्वयं चेतन महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं। तो भक्तों की, कृष्ण भक्त तो है लेकिन चेतन महाप्रभु को जानने वालों की संख्या बहुत कम है। और वैसे भी चेतन महाप्रभु का ये जो अवतार भी था ना, चेतन महाप्रभु अवतार नहीं, अवतार स्वयं कृष्ण आए हुए हैं, तो इनका जो अवतार था वैसे भी प्रच्छन्न अवतार था, वो स्वयं चाहते थे। क्योंकि ये क्यों अवतार हुआ, हम जैसे इस कलयुग के पापी से पापी भक्त व्यक्तियों की को कृपा देने के लिए ये अवतार हुआ है चेतन महाप्रभु का। देखिए गीता और भागवत में, गीता में भगवान ने बहुत सारे उपदेश दिए, कुरुक्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे उपदेशों को दिया, कैसे भक्ति करनी चाहिए, मेरा शरण में आना चाहिए, इस प्रकार का बहुत सारे ज्ञान दिया। लेकिन उस ज्ञान को देखा कि ये संसार के लोग कोई पालन करने वाले है नहीं, इसलिए स्वयं कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और क्या किए, हमारा हाथ पकड़कर उस भक्ति को कराना सिखाए चेतन महाप्रभु। नहीं तो हम इस भक्ति को नहीं प्राप्त कर पा सकते, इस प्रेमा भक्ति के पथ पर नहीं चल पाते। स्वयं चेतन महाप्रभु के रूप में आकर पग पग पे हाथ पकड़ के चेतन महाप्रभु की लीला में देखेंगे तो चेतन महाप्रभु ने एक एक भक्त को विशेष कृपा करते हुए, कोई पात्रता अपात्रता कोई नहीं देखा उन्होंने, उसके ऊपर कृपा किया उन्होंने। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये जो श्लोक है उनके 10 नामों का वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उन 10 नामों में से सबसे पहला नाम क्या है, सुवर्ण वर्ण। तो सुवर्ण का अर्थ क्या होता है, सब लोग जानते हैं, बहुत प्रिय है ना है ना, धन संपत्ति सबको प्रिय रहता है, भले से वो संस्कृत में है लेकिन बोल जानते सब लोग हैं है? तो सुवर्ण वर्ण सबसे पहला श्लोक का सबसे पहला शब्द जो है सुवर्ण वर्ण है। तो सुवर्ण का अर्थ होता है सोना और वर्ण का अर्थ होता है रंग, कलर। तो क्या हुआ अर्थ, सोने जैसा रंग, ये पहले शब्द। उसके बाद वाला शब्द क्या है, हे मांगो है? देख रहे हैं ना सब लोग, दिख रहा है कि नहीं, अंधेरा लग रहा है, दिख रहा है। तो उसके दूसरा शब्द क्या है, हे मांगो। तो हे मांगो का अर्थ क्या होता है, हे मांगो का अर्थ भी, हेम का अर्थ भी संस्कृत में हेम को सोना ही कहते हैं। हेम अंग मतलब सोने जैसा रंग। तो पहला शब्द क्या हुआ, सुवर्ण वर्ण, और दूसरा क्या हुआ, हे मांगो। तो पहले शब्द का अर्थ भी क्या हुआ, सोने जैसा रंग, और दूसरे शब्द का अर्थ भी क्या हुआ, सोने जैसा वर्ण। देखिए किसी यहाँ पे मैंने 10 नाम को गिनाया, अगर ये 10 नाम अगर है इस श्लोक में तो एक दो दो अक्षर वाला जो दो अक्षर है अभी जो मैंने गिनाया उसका सेम अर्थ है, मतलब ये 9 हुआ है, 10 कैसे हुआ, मतलब निश्चित रूप से इन दोनों में से किसी एक का अर्थ अलग है कि नहीं, क्योंकि 10 नाम का वर्णन हुआ है ना, तो पहला सुवर्ण वर्ण दूसरा हे मांगो, तो दोनों का अर्थ अगर सेम हुआ तो सहस्त्र नाम में से एक नाम कम हो गया फिर, है कि नहीं, और इस श्लोक में से 10 नाम में से एक कम हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी भी श्लोक की रचना की जाती है, जब वेदव्यास जी ने रचना किया तो ऐसा इस प्रकार की गलती हो नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे किसी एक का अर्थ अलग है। तो सुवर्ण वर्ण का यहाँ पे अर्थ अलग है। आचार्य गण बताते हैं कि सु मतलब, अभी व्याकरण की दृष्टिकोण से देखिए आप लोग, बहुत सरल है, ऐसा नहीं कि कठिन है, बहुत बहुत सुंदर था, सरलता से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सु मतलब सुंदर और वर्ण मतलब वर्णमाला। आप लोग जानते हैं ना क ख ग घ पढ़े कि नहीं, इंग्लिश में ABCD अल्फाबेट है ना। तो वर्ण मतलब स्वर अक्षर या नाम, सु मतलब सुंदर, तो सु मतलब सुंदर और वर्ण मतलब स्वर अक्षर या नाम, मतलब सबसे सुंदर नाम। सुवर्ण का अर्थ क्या हुआ, सबसे सुंदर नाम, और इस संसार में सबसे सुंदर नाम क्या है, कृष्ण। इससे सुंदर और क्या हो सकता है, इस संसार में सबसे सुंदर नाम अगर है तो वह क्या है, कृष्ण। इसलिए कहते हैं कि भागवत में वर्णन है, नामना मुख्य तरो नाम कृष्ण क्यम में परम तप, कि नामों में से अगर कोई श्रेष्ठ नाम अगर है ना तो वह है कृष्ण। तो यहां पर सुवर्ण का अर्थ क्या हुआ, कृष्ण। भागवत में मैत्री मुनि जब अपने गुरु के पास गए तो उस समय उनके गुरुजी उनको कुछ सेवा देते हैं और बोलते हैं कि हे मैत्रेय तुम जाओ मेरे लिए सोना लेकर आओ, सुवर्ण लेकर आओ मेरे लिए। कौन कहते हैं, मैत्रेय मुनि के गुरु। मैत्रेय मुनि के गुरु कहते हैं कि तुम जाओ मेरे लिए सुवर्ण लेकर आओ, और तुरंत ही गुरु की आज्ञा प्राप्त करके मैत्रेय मुनि तुरंत निकले, क्या करने के लिए, क्या लेने के लिए, सुवर्ण लेने के लिए। लेकिन रास्ते में वो विचार करने लगे कि मेरे गुरु जी तो परम वैरागी है, सन्यासी है, उनको सोना की कहां से वांटिंग हो गया, सोना की कहां से जरूरत है, ये निश्चित रूप से सोना नहीं है, निश्चित रूप से कुछ और मांगे हैं। और उन्होंने अर्थ निकाला तो समझ गए कि मेरे गुरुजी ने मेरे से सुवर्ण नहीं, मेरे से सबसे सुंदर नाम कृष्ण, कृष्ण को मांगा है। इसलिए तुरंत मैत्रेय मुनि निकल के गए नेपाल में गंडकी नदी से, उन्होंने शालिग्राम को लेकर आए अपने गुरु के पास दिए और बोले लीजिए हमारे गुरुजी आपने सुवर्ण मांगा, मैंने आपके लिए सुवर्ण लेकर आया। जैसे ही मैत्रेय मुनि के गुरु ने देखा कि हाँ मेरा शिष्य जो है सही चीज को समझ गया, मेरे लिए सुवर्ण है, शालिग्राम को लेकर कृष्ण को लेकर आया। तुरंत ही उनके गुरुजी ने उनका आशीर्वाद दिया कि जाओ आज से तुम भागवत कथा करने योग्य हो चुके हो क्योंकि तुमने सही चीज को समझ लिया। तो मेरा कहने का अर्थ है कि यहाँ पे सुवर्ण का अर्थ क्या है, कृष्ण, और उसके बाद वाला शब्द क्या है, फिर से वर्ण है, सुवर्ण वर्ण। तो सबसे सुंदर नाम क्या हुआ, कृष्ण, और वर्ण का अर्थ होता है वर्णन करने वाला। तो कृष्ण, कृष्ण के नामों को वर्णन करने वाले को सुवर्ण वर्ण कहा गया है कि नहीं। तो अब विचार करिए कि कृष्ण के नामों का सबसे ज्यादा वर्णन कौन किया है, चैतन्य महाप्रभु ने किया है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, और उन्होंने कुछ किया ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु अपने पूरे जीवन में कोई ज्यादा उपदेश नहीं दिया है, केवल शिष्याष्टकम 8 श्लोकों के अलावा और कोई उपदेश नहीं दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने केवल एक ही कार्य किया पूरे जीवन भर, केवल हरिनाम संकीर्तन किया और इस हरिनाम प्रेम रूपी धन को लोगों को वितरण किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में और कुछ नहीं किया, केवल इस हरिनाम रूपी धन को लोगों में वितरण किया। इसलिए सुवर्ण वर्ण कृष्ण के नामों को वर्णन करने वाले को सुवर्ण वर्ण कहते हैं, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु का यह पहला नाम। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा नाम क्या है, हे मांगो। हेम का अर्थ, जैसे कि मैं पहले ही बताया, हेम का अर्थ है सोना और अंग का अर्थ रंग या अंग, तो सोने जैसा रंग। तो अभी सोने जैसा रंग, तो आप प्रश्न ये कर सकते हैं कि आपने बोला कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। चैतन्य महाप्रभु कौन है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण। तो कृष्ण तो श्याम वर्ण के हैं और यहाँ पे वर्णन है कि हे मांगो, चैतन्य महाप्रभु है सोने के कलर के हैं, मतलब पीले कलर के हैं। तो श्याम कृष्ण गौर कैसे बन गए, ये प्रश्न उठ सकता है ना, कि कृष्ण अगर है तो कृष्ण तो श्याम सुंदर है ना, नीले रंग के हैं, लेकिन कृष्ण वो पीले कैसे बन गए, सोने के कलर के कैसे बन गए। तो इसके पीछे भी हमारे आचार्य कौन बता सकता है इसको, रूप गोस्वामी पाद, जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप गोस्वामी के पाद के प्रणाम मंत्र में कहा गया है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को जानने वाले रूप गोस्वामी पाद वो वर्णन करते हैं कि श्री राधिकाया प्रणय महिमा कृति से वान यही वा, कि जैसे ही श्याम सुंदर कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार कर लिया वैसे श्याम कृष्ण गौर हो गए। तो क्यों अंगीकार किया, क्योंकि कृष्ण ने देखा कि इस संसार में मेरी भक्ति करने वाले जो हमारे भक्त लोग हैं वो मेरे से ज्यादा आनंद को लूट रहे हैं। कृष्ण की भक्ति करने वाले जो भक्त गण हैं, जो भक्त लोग हैं, कृष्ण ने देखा कि मेरी भक्ति करते हैं लेकिन मेरे से ज्यादा आनंदित रहते हैं, हमेशा आनंद को प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण के मन में उस आनंद को प्राप्त करने का लोभ हो गया। कौन से आनंद को प्राप्त करने के लिए, जो उनकी भक्ति करके जो भक्त लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं उस आनंद को प्राप्त करने का लोभ किसको हो गया, भगवान कृष्ण को हो गया। तो उस लोभ के कारण, वो जो लोभ प्राप्त, हरे कृष्ण। तो जैसे ही चल रहा है, हरे कृष्णा, साउंड किधर है, चल रहा है। तो जैसे ही भगवान कृष्ण को ये मन के अंदर उनको लोभ हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कोई बात नहीं। तो जैसे ही भगवान कृष्ण के को ये लोभ हुआ एक कि कृष्ण हमारे जो भक्त है, जो हमारी भक्ति करने वाले लोग हैं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो जैसे ही भगवान कृष्ण के मन के अंदर एक जब श्याम के श्याम सुंदर के अंदर ये लोभ हुआ कि हमारे जो भक्त लोग हैं हमारी भक्ति करके ज्यादा आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका जो लोभ हुआ उस आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान ने क्या किया, सोचा कि मैं कैसे इस आनंद को प्राप्त करूंगा, कैसे इस आनंद को प्राप्त करूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उस आनंद को प्राप्त करना तो क्या बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा, तभी तो आनंद की प्राप्ति होगा, क्योंकि उनकी भक्ति करने वाले जो भक्त है वो आनंदित हो रहे हैं, और वही लोभ हुआ उनको, तो उनको भी भक्त बनना पड़ेगा। इसलिए और भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्त के भाव को अंगीकार करना पड़ेगा, ग्रहण करने पड़ेगा, तभी तो भक्त बनेंगे। इसलिए चेतन इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि संसार में सबसे बड़ा भक्त हमारा कौन है, तो भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन है, श्रीमती राधा रानी सबसे बड़ी भक्ता है भगवान कृष्ण के। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया कि अपने सबसे बड़े भक्त श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार कर लिया, और जैसे ही श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार कर लिया तो श्याम कृष्ण गौर हो गए। क्यों, क्योंकि राधा रानी का जो कांति है कैसा है, तप्त कांचन गौरांगी, वो कैसे है, तपाए पिघले हुए सोने के समान है, पिघले हुए सोने। तो जैसे ही भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के भाव को अंगीकार किए तो तुरंत ही भाव बदला, तो उनके शरीर की कांति बदल गई, है कि नहीं। जैसे मनुष्य के अंदर अगर भाव चेंज होता है ना तो निश्चित रूप से उसके शरीर में बदलाव आ जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में आप सोए हुए हैं, तो सोया है व्यक्ति तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में सोया रहता है, आराम किया रहता है ना। मान लो सो के उठ के आया, या तो कोई चलते जा रहा होगा, चलते जा रहा है, अचानक कोई व्यक्ति आया और उसको सामने से दो झापड़ कस के बजा दिया इधर, तो क्या होगा है? जब दो झापड़ उसको बजाएगा तो क्या होगा है? उसको गुस्सा आएगा ना, क्यों गुस्सा, अंदर क्रोध का भाव आएगा। जैसे ही क्रोध का भाव आएगा तुरंत उसका चेहरा बदल जाएगा, सकल पे एकदम गुस्सा क्रोध की अवस्था आ जाएगी ना। क्यों क्यों क्रोध अवस्था है शरीर में क्यों देखने लगा, क्योंकि भाव बदल गया। अंदर जो अभी बहुत प्रसन्न मुद्रा में था लेकिन अब क्या हुआ, थप्पड़ पड़ने से अंदर क्रोध का भाव आया, तो क्या हुआ, सकल बदल गया, है कि नहीं। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण ने जैसे ही श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार किया तो कृष्ण के कांति भी बदल गई, और श्रीमती राधा रानी की कांति के जैसे तत्त कांचन गौरांगी, तपाए हुए सोने के समान हो गए, है ना। तो इसलिए चेतन महाप्रभु का जो ये जो दूसरा नाम कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि हे मांगो, वो उनका कलर कैसा है, तपाए हुए सोने के समान है। चेतन महाप्रभु ने इसी कांति को लेकर, चेतन महाप्रभु ने अपने जीवन में केवल कुछ नहीं, केवल लोगों को पापी से पापी व्यक्ति को भी उद्धार किया, पापी से पापी व्यक्ति को भी उद्धार किया। चेतन महाप्रभु ने इस हरिनाम को उन्होंने दिया सबको, और चेतन महाप्रभु इस हरिनाम को देते हुए भीख मांगते थे कि आओ हरिनाम को लो, हरिनाम को लो, हरिनाम रूपी धन को देते थे उसको, और एकदम पागलों की तरह लोगों से बहुत रिक्वेस्ट किया करते थे कि हरिनाम का उच्चारण करो, हरिनाम का उच्चारण करो। इस पागल को देखकर लोग ना उनके बोलने के, क्या ये पागल की तरह तुम व्यवहार करते हो। चेतन महाप्रभु उन लोगों को समझाते हैं कि क्या करो, जब मैं अपने गुरु के पास गया था तो गुरु के पास जाकर मैंने अपने गुरु के पास गया तो उन्होंने, मैं बोला कि मुझे कुछ वेद और शास्त्रों का ज्ञान दीजिए, तो मेरे गुरु ने क्या कहा, हे चेतन ने तुम्हारे इस मन के अंदर ना वेद और शास्त्र का ज्ञान जाने वाला नहीं है, इसलिए तुम ये हरिनाम लो, इस हरिनाम का जप केवल करते रहो। गुरु मुहे मूर्ख जाने करिला शासन, गुरु ने मुझे मूर्ख जाना और बोला इस हरिनाम का जप करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और मैं तब से उस हरिनाम का जप करने लगा, चेतन महाप्रभु कहते तब से मैं उस हरिनाम का जप करने लगा, और जप करते 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 मैं पागल सा हो गया, और जब इस प्रकार का हो गया मैं, तो वापस मैं अपने गुरु के पास गया। वापस गुरु के पास जाकर मैंने पूछा कि गुरु जी आपने जिस मंत्र का जाप करने के लिए मुझे बोला, उस मंत्र का जब से मैं जाप करने लगा तब से तो मैं एकदम पागल जैसा हो गया। किवा मंत्र दिया गोसाई किवा तारा बल, जपिते जपिते नाम करे पागल। तो उस समय मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि हे चैतन्य, अभी ये नाम जो है ना तुम्हारे ऊपर फलीभूत हो रहा है, बस इसको जपते रहो। सीधा महाप्रभु बड़े नम्रता से सबको ये समझाते थे, विशेष करके विद्वानों को, प्रकाशानंद सरस्वती इन लोग को बहुत सुंदर तरीके से समझाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में केवल इस हरिनाम का लोगों को वितरण किया, और वितरण करके उस प्रेम को, कृष्ण प्रेम को लोगों में बांटा। तो चैतन्य महाप्रभु का जो ये दूसरा नाम है हे मांगो, उनके लिए आया हुआ है। एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, तत्पश्चात वरांग शब्द आया हुआ है। वरांग मतलब वरण करने योग्य, सर वर मतलब श्रेष्ठ, जिसको वरण किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। तो श्रेष्ठता भी दो प्रकार की होती है एक्चुअली। एक श्रेष्ठ भी व्यक्ति दो प्रकार से होता है, एक सुंदरता के दृष्टिकोण से और दूसरा प्रभाव के दृष्टिकोण से। बहुत सुंदर होता है या तो उसका बहुत प्रभाव, बहुत नाम होता है, उसके पास बहुत धन संपत्ति होता है ना। चैतन्य महाप्रभु इन दोनों दृष्टिकोण से भी बहुत सुंदर थे। सुंदरता के दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य सिंहेर नवदीप अवतार। चैतन्य महाप्रभु जो कि सिंह के समान है, नवदीप में अवतार लिए, और कैसा है, सिंह ग्रीवा सिंह वीर सिंह अहंकार। चैतन्य महाप्रभु जब बोलते थे, हमको जैसे माइक डिस्टर्ब हुआ ना, डिस्टर्ब हो गया ना, चैतन्य महाप्रभु को माइक की जरूरत नहीं पड़ती थी, हजारों हजारों लाखों लोग ऐसे ही बैठ के उनको सुना करते थे। ओंकार था, बहुत सुंदर स्वर था उनका। और तप्त हेम कांति सम प्रकांड शरीर, तपाए हुए सोने के समान उनका कांति था। तो इस प्रकार से बहुत सुंदरता का वर्णन हुआ है कि उनकी कद लंबी थी। और एक बार तो जगन्नाथपुरी में जब उनको अष्ट सात्विक विकार आया चैतन्य महाप्रभु को, तो उस समय कृष्ण के नामों का उच्चारण करते, कीर्तन करते करते उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आया, और अष्ट सात्विक विकार आने के कारण पत्थर पिघल गया। पत्थर के ऊपर चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह पड़ गए, और उस चरण चिन्ह जब पड़े तो भक्तों ने उस चरण को मापा तो लगभग 13.5 इंच वो चरण लंबा था, 13.5। नॉर्मल व्यक्ति के जो बड़े लंबे भी होंगे ना, उसके 8 और 8.5 इंच से ऊपर नहीं होते हैं। हमारे तो 6.5 ही रहेंगे, लेकिन मैं लंबे व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कितने थे चरण, 13.5 इंच लंबे थे। तो अभी विद्वान लोग अनुमान लगा के, जब चरण का इतना है तो अनुमान लगाए, तो हाथ का भी अनुमान लगा लिए और उनके हाइट का भी अनुमान लगा लिए। तो उनका हाथ जो था ना, आजा अनुलंबित भुजो कनका हाथों, है ना, उनके हाथ भी बहुत लंबे लंबे थे, 23 इंच के हाथ थे उनके। नॉर्मल व्यक्ति के 18 इंच के होते हैं। और उनकी कद जो था ना, लगभग 89 इंच, इतने हाइट थे चैतन्य महाप्रभु। बहुत सुंदर कांति था उनका। और इसका वर्णन करते हुए वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु असंख्य भक्तों के साथ में, भक्तों के साथ टोली में नगर कीर्तन करते हुए, और वो रथ यात्रा का समय था। रथ यात्रा के समय में आप विचार करें कि जगन्नाथपुरी में कितनी भीड़ होता है, जिस भीड़ का वर्णन नहीं कर सकते, इतनी भीड़ होता है रथ यात्रा के समय। उस रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ, असंख्य लोगों के साथ कीर्तन कर रहे थे, और वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते उस भीड़ का वर्णन करते हैं कि इतना भीड़ था कि अगर ऊपर से कोई सरसों का अगर दाना गिराए तो एक भी दाना नीचे ना गिरे, इतना भीड़ था। उस भीड़ का अंदाजा लगा लीजिए कि ऊपर से सरसों का दाना गिराए तो एक दाना नीचे ना गिरे, इतना भीड़ था। लेकिन ऐसे भीड़ में भी सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को दर्शन कर पा रहे थे, क्योंकि हाइट जो इतनी थी, सुंदरता उनका इतना था, सब लोग दर्शन करते थे चैतन्य महाप्रभु की। कांति के विषय में बहुत सुंदर तरीके से वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हुए बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं। तो इस प्रकार से सुंदरता के दृष्टिकोण से भी चैतन्य महाप्रभु बहुत श्रेष्ठ थे, और उनका प्रभाव भी बहुत था। इतना प्रभाव था कि एक बार जिसको स्पर्श कर लिया उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। अरे स्पर्श तो करना छोड़ो, इतना कह दिया कि जाओ तुमको प्रेम दे दिया, कृष्ण प्रेम तुमको दे दिया, और वो व्यक्ति नाचने लगता था। शुक्लाम्बर नाम का एक ब्रह्मचारी थे, वो बहुत भ्रमण करते, तीर्थाटन करते करते, बहुत साधन भक्ति करते करते जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो मैंने वो बोलने लगे कि प्रभु, मैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए मैं बहुत बड़ी बड़ी तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने देखते 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 उनको बोला, जा तुमको प्रेम दिया, और तुरंत ही शुक्लांगवा ब्रह्मचारी तुरंत कृष्ण प्रेम भाव विभोर होकर नाचने लगे, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। चैतन्य महाप्रभु की इस प्रभाव की दृष्टि से रवीना एक बार कोई उनके संपर्क में आ जाता था तुरंत ही उसका उद्धार हो जाता था। तो प्रभाव के दृष्टिकोण से भी तो चैतन्य महाप्रभु का जो वरांग ये शब्द है वो बहुत श्रेष्ठ थे सुंदरता की दृष्टिकोण से भी और प्रभाव की दृष्टिकोण से भी। तो बहुत सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम कि चैतन्य महाप्रभु किस तरह से लोगों को पतित से पतित जीवात्माओं को भी उन्होंने पात्रता अपात्रता देखे बिना उनका उद्धार किया। हाँ देखिए दानी तो बहुत होते हैं दान देते हैं लेकिन दान को धारण करने के लिए पात्र नहीं देते। चैतन्य महाप्रभु ने पात्र भी दिया और दान भी दिया है ना। तो 10 मिनट और करेंगे हम फिर खत्म करेंगे। मैं एक लीला का वर्णन करता हूँ चैतन्य भागवत से जो कि वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु का। देखिए चैतन्य महाप्रभु का ये महावदान न्याय है अवतार महावदान न्याय है ना नमो महावदान न्याय। वो हमेशा इस कलयुग के जीवात्मा पतित से पतित व्यक्तियों को भी उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु ने। कोई पात्रता कोई देखा नहीं उन्होंने। जैसे भगवान कृष्ण आए नरसिंह आए वामन आए वराह आए सब लोगों ने क्या किया मारा। कृष्ण आए लात घुसा मारे असुरों को मारे है ना। राम आए धनुष बाण करके असुरों को मारा लेकिन भगवान कृष्ण के अवतारों में से चैतन्य महाप्रभु कैसा अवतार है कि उन्होंने मारा नहीं बल्कि उसको गले लगाकर कृष्ण प्रेम दिया मारा नहीं उनको। चैतन्य महाप्रभु एक लीला का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं कि चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक बार दक्षिण भारत की यात्रा से रिटर्न होते हुए थे वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे अपने भक्तों के साथ कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते करते कब किसके ऊपर नजर पड़ जाए उनका और उसको प्रेम दे देते थे। श्रीवास आंगन में जहाँ पे नित्य प्रतिदिन कीर्तन चलता था वहां पे परिक्रमा करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने एक मुसलमान को देखा। परिक्रमा मार्ग में जैसे ही उन्होंने देखा कि मुसलमान है करके खड़ा हो गए वो और देखने लगे। वो मुसलमान मधुमत था और दर्जी था वो कपड़े सिल रहा था। चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा मार्ग से ही देखने लगे उसको बस देखने लगे और मुसलमान उनको देख रहा है और वो थोड़ा इधर उधर करा मुझे ही देख रहे हैं क्या। वो चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि उस मुसलमान के ऊपर टिक गई। हालांकि वो पापी था शराब पिया हुआ था लेकिन टिक गई उसको और चैतन्य महाप्रभु करुण की दृष्टि से इसको प्रेम देना है और उस परिक्रमा मार्ग में खड़ा होकर उस दर्जी को देख रहे हैं और दर्जी को देख रहे हैं वो दर्जी भी देखने लगा। देखते 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 कुछ ही क्षणों में वो दर्जी ने मैंने देख लिया करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे भाई क्या देख लिया वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना षडभुज अवतार दर्शन दे दिया था और वो केवल यही पागल होकर बोलने लगा मैंने देख लिया उसको कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया। ऐसे ही वृंदावन जब पहुंचे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में धोबी घाट आता है। उस धोबी घाट पे चैतन्य महाप्रभु पहुंचे अपने भक्तों के साथ नगर कीर्तन करते हुए। जैसे ही धोबी घाट पे पहुंचे चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि एक धोबी कपड़ा धो रहा है। तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु भक्तों की टोली से निकलकर जाने लगे उस धोबी की तरफ से जहां पे धोबी कपड़ा धो रहा था और धोबी के पीछे जाकर चैतन्य महाप्रभु खड़े हो गए। और उस धोबी को देख और सारे भक्त दूर खड़ा होकर देख रहे कि अब तो कुछ होने वाला है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु टोली से बाहर निकले मतलब किसी न किसी का उद्धार करेंगे पक्का और आज इस धोबी को कृष्ण प्रेम मिलने वाला है। चैतन्य महाप्रभु ने उस धोबी के पीछे खड़ा होकर बोलने लगे कि धोबी हरि बोलो। तो धोबी ने ध्यान नहीं दिया फिर सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने बोला धोबी हरि बोलो। तो सोचने लगा कौन है भाई मेरे को डिस्टर्ब मत करो मेरा काम करने दो मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा मेरे को डिस्टर्ब मत करो तुम यहां तो साधु संन्यासी आते ही रहते क्या तुम मेरे को डिस्टर्ब मत करो। फिर भी चैतन्य महाप्रभु बोले धोबी हरि बोलो। बहुत प्रेम से बोलने लगे धोबी हरि बोलो। तुरंत धोबी बोलने वाला कौन है भाई मेरे को डिस्टर्ब मत करो देखो मेरे पास कुछ नहीं है तुम इधर से जाओ। अरे मैं हरि बोलूंगा तो ये कपड़े कौन धोएगा ये मैं हरि हरि बोलूंगा कहते ना हरे कृष्णा जप करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा। अरे हरे कृष्णा जप करिए और जिसका जप करे ना काम वो करेगा। तो धोबी ने बोला कि मैं हरि बोल बोलूंगा तो मेरा काम कौन करेगा कपड़े कौन धोएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कारुण्य की दृष्टिकोण रखते हुए देखते हुए बोले कि धोबी हरि बोलो कपड़े मैं धो दूंगा। जैसे ही सुना धोबी ने कि बोल रहा है हरि बोलो कपड़े मैं धो दूंगा, तुम हरि बोलो तुम्हारा काम मैं करूंगा, कमा के मैं दूंगा। तो तुरंत ही क्या किया उसने, कौन है भाई देखते हैं, तुरंत ही घूम के धोबी ने देखा। और जैसे ही धोबी ने चैतन्य महाप्रभु को पीछे तुरंत देखा और चैतन्य महाप्रभु के ने बोलना चालू किया हरि बोलो हरि बोलो, तो धोबी बोला हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक बार बोला, दो बार बोला, तीसरी बार जब बोला धोबी ने हरि बोल, चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उसका आलिंगन कर लिया। जैसे ही आलिंगन किया तुरंत ही उस चैतन्य महाप्रभु का वो जो प्रेम है कृष्ण प्रेम उसमें ट्रांसफर हो गया और उसके ऊपर कृपा कर दिया और वो धोबी जोर जोर से नाचने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही नाचने लगा चैतन्य महाप्रभु ने उसको नाचते हुए देखकर तुरंत ही जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ये उसी प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि जैसे एक बालक अपने खिलौने में चाबी लगाकर उस छोड़ के दूर से खड़ा होकर देखता है चैतन्य महाप्रभु देख रहे हो नाच रहा है, धोबी नाच रहा है, चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर देख रहे हैं और नाच दे रहा और सब भक्त लोग चारों बाजू देख रहे हैं और इतना सुंदर तरीके से डांस करने लगा वो, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया उसको। और यह देखकर कुछ समय जब बीत गया तो उसके घर वाले चिंतित हो गए, अभी तक आया नहीं, रोज तो आ जाते थे, पत्नी चिंतित होने लगी, पतिदेव तो अब तक आ जाते थे, आज तो इतना टाइम हो गया क्यों नहीं आए। तुरंत ही पत्नी ने सोचा चिंतित होकर, चलो देखती हूँ धोबी घाट में क्या कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं। और जाके जैसे ही पत्नी ने देखा कि बहुत भीड़ लगा हुआ है, उस भीड़ के बीच में मेरा पति नाच रहा है, वो तो आश्चर्य हो गई। अरे कभी कभी दमन सेंटर में जाता है, भक्त लोग बुलाते तो भी डांस नहीं करता है, कभी तो डांस करते हुए देखा नहीं और बुलाते भी भक्त लोग तो थोड़ा थोड़ा हिल के वह साइड में हट जाता है, इतना सुंदर कहां से डांस कर रहा है, वो भी देखने लगे। लेकिन देख रहे कि डांस करते ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वो बोलने लगे पतिदेव पतिदेव क्या कर रहे हो, चलो चलो घर पे चलो, लेट हो गया है, अभी पति कहां सुनने वाला, उनको तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो चुकी है। लेकिन पत्नी थी और धीरे धीरे सब वो सोचने लगी, मेरे पति को लगता है भूत पकड़ लिया, इस प्रकार का सोचने लगी कि मेरे पति को भूत पकड़ लिया, वो तो सुन ही रहे थे, उसको मालूम नहीं था भूत नहीं, ये तो सती का सूत पकड़ लिया उसको, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई है। और उस पत्नी ने है तो पत्नी, उसको भूत पकड़ लिया ऐसा कर करके क्या कर रहे हो करके पास में जाकर बोलते रुको रुको बस करो डांस मत करो। अब जैसे ही उनको पकड़ती है वो प्रेम उसमें भी ट्रांसफर हो जाता है और वो भी जोर से हरी बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी डांस करने लगे। और गांव वाले देखने लगे इस तो एक एक करके गांव वाले भी रोकने का प्रयास किए और उस समय एक एक करके उनमें ट्रांसफर हुआ और पूरा गांव झूमने लगा और चैतन्य महाप्रभु ने पूरे गांव को कृष्ण प्रेम से डुबो दिया। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, जब हम इस हरि नाम को हमको जपना चाहिए, इस हरि नाम को आस्वादन करना चाहिए, हरे कीर्तन करना चाहिए, जिससे हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी और निश्चित रूप से हमको एक कृष्ण प्रेम रूपी धन प्राप्त होगा। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर पूर्णिमा आविर्भाव दिवस की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव दिवस की जय। कीर्तन करना है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारा बहुत सौभाग्य है कि प्रभु जी के कारण से हमने